का था, रूह वही, रूप नया।
बचपन में ही शादी कर दी गई, उम्र के 12 साल में, एक ऐसी लड़की जहाँ से चली थी जिसके गांव में रास्ते तक नहीं थे। आज मुंबई शहर में उसके नाम से, उसकी कंपनी के नाम से दो रोड है। जिसके पास में रहने के लिए घर नहीं था, लोगों के घर में रही हूँ मैं, गुजराती फैमिली के घर में रही हूँ, लेकिन मैं बिल्डर बनके आज मैं घर बेच रही हूँ। जिसने 2 रुपए रोज से काम स्टार्ट किया था, लेकिन आज 2000 करोड़ कंपनी की मैं मालकिन। मैं कल्पना सरोज, आज मैं आपको अपनी कहानी बताऊंगी। कहाँ से मैंने 2 रुपए से शुरू किया था, 60 रुपए महीना, 2 रुपए रोज, और आज देखिए मुझे, मैं आज 2000 करोड़ की मालकिन हूँ। क्या यकीन आएगा आपको? मैं एक ऐसी लड़की जिसको एजुकेशन नहीं मिला, बचपन में शादी कर दी गई। मेरे मामा जी कहते थे कि लड़कियों को पढ़ाकर करना क्या है, पढ़कर करेगी क्या, चूल्हा चौके के सिवा तो कुछ करना नहीं है, लड़कियां तो वैसे भी जहर की पुड़िया होती है। इस तरह से मेरा बचपन था और बचपन में ही शादी कर दी गई। उम्र के 12 साल में मैं पढ़ना चाहती थी, पढ़ लिख कर आगे बढ़ना चाहती थी। मैं काफ़ी होशियार विद्यार्थी भी थी, मगर नहीं, किसी ने मेरी नहीं सुनी। और शादी के बाद ससुराल जिस तरह से होनी चाहिए, हर लड़की का जिस तरह का सपना होता है कि उसका ससुराल कैसे हो, कोई प्यार करने वाला हो, कोई अपना कहने वाले हो, मगर नहीं, वहाँ तो कुछ और ही था। वहाँ जिस तरह से बहुओं को मारा पीटा जाता है, गाली गलौज दिया जाता है, माँ बाप के ऊपर से गाली दी जाती है। अगर मान लो खाना बना लिया, नमक ज़्यादा हो गया, तो माँ के ऊपर से गाली कि क्या माँ ने इसी तरह से खाना बनाना सिखाया है, और मारपीट शुरू हो जाती थी। तो इस तरह से किसी तरह से 6 महीने बीत गए। बस एक आदत सी हो गई थी कि रोज़ मार खाना है, गाली खाना है, चाहे काम जितना भी अच्छा कर लो। और एक छोटी 12 साल की उम्र की लड़की घर का इतना सारा काम करते हुए भी हर दम सिर्फ गाली खा रही है, मार खा रही है, ना ढंग का खाना मिल रहा है, ना ढंग के कपड़े पहनने को मिल रहे हैं। यहाँ तक कि बाल बनाने की भी वहाँ पर ये नहीं थी कि मैं बाल बना लूँ। अगर बाल भी बनाने को जाएंगे तो हमारे जेठ जी ये कहते थे कि भाई कहाँ, नाचने के लिए जाना है क्या तुम्हें जो बाल बनाने जा रही हो? मतलब तो कितने घटिया हो सकते हैं, आप लोग खुद सोच सकते। इसी तरह से 6 महीने बीत गए और मेरे पिताजी मुझे मिलने के लिए आए। जब पिताजी मिलने के लिए आए, मैं पिताजी को लिपट के बहुत रोई, बहुत रोना आया मुझे, क्योंकि पहली बार किसी अपने को अपने करीब देखा था। बाबा भी रोए, उन्होंने देखा कि मेरी बेटी इतनी मतलब शोक चंचल हंसती खेलती हुई, और आज इसको क्या हो गया, क्यों ये इस तरह से हो गई। और बाबा मुझे वहाँ से कहने लगे कि तुम्हें अभी मेरे साथ चलना होगा, मैं यहाँ तुम्हें एक पल भी नहीं रहने दूंगा। और मेरे बाबा मुझे ले गए, कहने लगे कि जो भी हो गया भूल जाओ, समझो कि एक सपना था जो बुरा सपना था, मैं तुम्हें फिर से पढ़ाऊँगा, तुम्हारा फिर से स्कूल में दाखिला कराऊँगा। और बाबा ने वही किया, मगर अफसोस वहाँ के जो लोग थे, जो समाज था, वो ताने मारने लगे, कहने लगे कि मेरे बाबा सही आदमी नहीं हैं जिन्होंने अपनी बेटी को ससुराल से ले आए। और मैं तो सही थी ही नहीं, मैं तो बहुत ही बुरी थी कि एक ऐसी लड़की जो ससुराल छोड़कर चली आती है। क्योंकि हमारे यहाँ की संस्कृति ये कहती है कि लड़की डोली में जाए, अर्थी में भले निकले, लेकिन वो इस तरह से वापस नहीं आ सकती, ये परंपरा रही है। तो मैं परंपरा के विरुद्ध हूँ, ऐसे लोगों को लगने लगा, और सारे लोग मेरे माँ बाप को ताने मारने लगे, मुझे कोसने लगे। और जब मैंने देखा कि ये तो बहुत, वहाँ तो था ही था, लेकिन यहाँ तो इससे भी ज़्यादा है, तब फिर मैं क्या करूँ, मेरी ज़िंदगी तो वैसे ही बोझ बन चुकी थी, सब कुछ खत्म हो चुका था, मेरी पढ़ाई खत्म हो चुकी थी, मेरी शादी खत्म हो चुकी थी, और आगे पढ़ने के लिए बाबा कहते हैं, लेकिन ये भी नामुमकिन नहीं था। तो मैं क्या करूँ? तो फिर मुझे ऐसे लगा कि मुझे मर जाना चाहिए, क्योंकि ऐसी ज़िंदगी मेरे किसी भी काम की नहीं है। और फिर मैंने पॉइज़न पी लिया। पॉइज़न पीने के बाद भी डॉक्टर ने कहा कि ये बच नहीं पाएगी, 24 घंटे में अगर इसको होश आ गया तो ओके, वरना नहीं बच पाएगी। लेकिन काफ़ी कोशिशों के बाद मैं बच गई। बचने के बाद लोग मिलने के लिए आने लगे, हमारे पुलिस स्टेशन के, मेरे बाबा पुलिस हवलदार थे, तो वहाँ के पुलिस वाले जिनको हम चाचा कहते थे, मेरे रिश्तेदार, जितने भी लोग मुझे मिलने के लिए आए, वो सब ये कह रहे थे कि ये लड़की ये तो क्या कर रही थी, मालूम भी है अगर मर गई होती तो लोग क्या कहते, लोग तो यही कहते ना कि महादेव की बेटी ने ज़रूर ऐसा कोई काम किया होगा जिसकी वजह से ये मर गई। ये जो बात है मेरे दिल की गहराई तक पहुंच गई कि ये क्या तरीका हुआ। कि लोगों को हमारे दुख दर्द से कोई लेना देना नहीं, हम मरे या जिए उसे कोई लेना देना नहीं। तो ठीक है, अगर कुछ करके मरना है तो फिर कुछ करके जीना क्यों नहीं। और उसी दिन मैंने ठान ली कि अब मरने की बात मैं कभी नहीं करूँगी और अब मैं जी कर दिखाऊँगी। और फिर मैंने अपनी कोशिशें शुरू की, अपना संघर्ष शुरू किया। मैंने काफ़ी कोशिशें की कि मुझे कहीं नौकरी मिलेगी, मैं अपने बलबूते पे जीऊँ, अपने कदमों पे खड़ी रहूँ। और मैं एक पुलिस हवलदार की बेटी होने के नाते मैं पुलिस के पास गई कि मैं लेडीज़ पुलिस बनूँ, लेकिन मेरी उम्र और मेरा एजुकेशन कम होने के नाते वो नहीं हुआ। नर्सिंग में जाना चाहती थी, नर्स का नहीं हुआ। यहाँ तक कि मैंने ये भी सोच लिया कि मैं आर्मी ज्वाइन कर लूँ ताकि मैं देश के काम आ जाऊँ अपने, बट नहीं हो पाया। फिर मैं क्या करूँ, कैसे जीऊँ, मुझे खेतों में काम नहीं करना था। तो फिर मैंने अपनी माँ से कहा कि मुझे मुंबई भेज दो, हो सकता है कि मैं वहाँ, बहुत बड़े मिल है, कंपनियाँ हैं, कहीं ना कहीं ज्वाइन कर लूँगी, काम कर लूँगी। और बड़ी मुश्किल से मेरी माँ ने मुझे मुंबई भेजा। और मुंबई आने के बाद में मैं एक होजरी कंपनी में, सन मिल कंपाउंड लोअर परेल, वहाँ पे मैं काम पे लग गई होजरी कंपनी में। वहाँ मैंने 2 रुपये रोज़ से और 60 रुपये महीने से काम स्टार्ट कर दिया। तो 2-3 साल तक मेरे इसी तरह से गए, मेरे बाबा की नौकरी जाती रही, मेरे बाबा मेरे पास आ गए। और उसके बाद मेरी बहन बहुत बीमार हो गई और फिर मुझे पैसों की अहमियत का पता चला कि पैसे अगर नहीं हो तो हमारे अपने हमारे सामने दम तोड़ देते हैं और हम उनको बचा भी नहीं पाते। और तब फिर मैंने ये सोचा कि मुझे पैसे कमाना चाहिए। और फिर मैंने देखा कि मैं कहाँ से और कैसे पैसे कमाऊँगी, तो मुझे कुछ गवर्नमेंट के स्कीम के बारे में पता चला। तो मैंने एक 50,000 का लोन लिया, 50,000 लोन लेकर मैंने अपना बिजनेस स्टार्ट किया। मैंने बुटीक के लिए लोन लिया था, बुटीक स्टार्ट किया, उसी के साथ फर्नीचर स्टार्ट किया। लेकिन उसी के साथ मुझे ये पता चला कि हमारे बहुत सारे यूथ ऐसे हैं जिनको गवर्नमेंट सभी को नौकरी नहीं दे सकती, तो जो मैंने पाया वो सभी को मिले, इसलिए मैंने एक सुशिक्षित बेरोजगारी युवक संगठना बनाई। और उस संगठना के द्वारा उन बच्चों लोगों को भी उसी तरह से अपने कदमों पर खड़ा करने की मैंने पूरी कोशिश की। और इसी तरह से माउथ टू माउथ मेरा बहुत अच्छा नाम होने लगा, क्योंकि बच्चे जो है वो उनकी आवारागर्दी छूट गई या फिर उन माँ बापों के घर के चूल्हे जलने लगे और लोग मेरे लिए काफ़ी अच्छी बात करने लगे। तो लोगों के जो भी मतलब मुसीबतें होती थी या जो भी उनके प्रॉब्लम्स होते थे तो लोग मेरे पास चले आते थे कि मैडम हमारी ये प्रॉब्लम है, सॉल्व करो। तो इसी तरह से एक प्लॉट का प्रॉब्लम मेरे पास आया, वो प्लॉट मैंने क्लियर किया और इसी तरह से मैं बिल्डर बन गई। लेकिन बिल्डर बनते हुए भी पुरुष प्रधान देश में मेरा बिल्डर बनना, एक तो मैं बुद्धिस्ट हूँ, दलित हूँ और ऊपर से मैं लेडीज़ हूँ, 99 की बात है, किसी को कैसे पसंद आ सकता है कि एक दलित महिला आके बिल्डर बन जाए। तो मेरे नाम की सुपारी तक के दी गई, मुझे मारने की कोशिश तक के कर दी गई। लेकिन मैं उसी वक्त वहाँ के पुलिस कमिश्नर के पास गई, उनको मैंने सारी हकीकत बताई कि इस तरह की बात मेरे कान पे आई। पुलिस ने उन लोगों को पकड़ा और फिर पुलिस ने कहा कि भाई तुम एक काम कर लो, तुम्हारे लिए सिक्योरिटी ले लो। मैंने कहा नहीं, सिक्योरिटी नहीं चाहिए मुझे, अगर देना है तो मुझे रिवॉल्वर लाइसेंस दे दीजिएगा ताकि मैं अपनी रक्षा खुद करूँगी। और मैंने रिवॉल्वर ले लिया। तो इस तरह से मेरी जर्नी शुरू रही, मैं बिल्डर बनी और फिर मैं शुगर फैक्ट्री की डायरेक्टर बनी। और इसी तरह से कमानी ट्यूब्स लिमिटेड के कुछ वर्कर्स मेरे पास में आए, क्योंकि कमानी ट्यूब्स हमारे देश की बहुत बड़ी ऐसी कंपनी है जिसकी वजह से ऐसी का एक्ट तैयार हुआ, सुप्रीम कोर्ट की बेबी है वो। सुप्रीम कोर्ट ने पहली बार वर्कर्स को मालिक बनाया और मालिक को बाजू में कर दिया। तो उस कंपनी को बचाने के लिए मैंने काफ़ी कुछ मेहनत की, क्योंकि मैंने देखा था कि बेरोजगारी अगर होती है तो भूख और प्यास से किस तरह से इंसान तड़प के मरता है, क्योंकि मेरी बहन को मैंने तड़पते हुए मरते हुए देखा था। तो उन्हीं वर्करों के हित के लिए मैंने कमानी ट्यूब में मैं आई और मैंने काम किया। 2000 में मैं आई थी, 2000 से लेके 2006 तक कंटिन्यू बीएफआर कोर्ट में हियरिंग्स होते रहे और 21 मार्च 2006 में कोर्ट ने कंपनी मुझे चलाने के लिए दे दी। और उसके बाद कोर्ट ने कंडीशन दी थी कि 2011 में आपको सिका से बाहर निकलना है, और हम बिल्कुल 2011 में सिका से बाहर निकल गए। तो मैं एक ऐसी लड़की जहाँ से चली थी जिसके गाँव में रास्ते तक नहीं थे, आज मुंबई शहर में उसके नाम से, उसकी कंपनी के नाम से 2 रोड है, रामजी भाई कमानी और कुरला कमानी। एक ऐसी लड़की जिसके पास में 60 पैसे नहीं हुआ करते थे तो वो कुरला से लेके चेंबूर तक पैदल चला करती थी, क्योंकि बस के लिए 60 पैसे नहीं। आज वो लग्जरी गाड़ियों में घूम रही है। आज ऐसी लड़की जिसके पास में रहने के लिए घर नहीं था, लोगों के घर में रही हूँ मैं, गुजराती फैमिली के घर में रही हूँ, लेकिन मैं बिल्डर बन के आज मैं घर बेच रही हूँ। आज जिसने 2 रुपये रोज से काम स्टार्ट किया था, लेकिन आज 2000 करोड़ कंपनी की मैं मालकिन हूँ। तो इस तरह से अगर इंसान चाहे तो बहुत कुछ कर सकता है। मेरे टाइम पे करने के लिए कुछ भी नहीं था, कुछ भी नहीं था। यूं समझ लीजिए ना कि राख के ढेर में ढूंढो तो चिंगारी भी ना मिले, इस तरह की मेरी अपनी पोजीशन थी। उसके बावजूद भी मैंने जो भी अपने जीने का तरीका ढूंढा और मैं आज इस मुकाम तक पहुंची। तो आपके लिए बहुत कुछ है करने के लिए, बहुत कुछ है। गवर्नमेंट के बहुत सारे बड़े बड़े स्कीम है, हर जगह से आपको सपोर्ट है, जहाँ से भी आप चलो वहाँ आपके लिए सपोर्ट है। तो मुझे ऐसे लगता है कि आप बहुत कुछ कर सकते हैं। एक ऐसी अनाड़ी लड़की, क्योंकि जो एजुकेशन मैंने लिया है 9th तक का एजुकेशन, उसको एजुकेशन कहा ही नहीं जाएगा, तो ऐसी लड़की आज IIM की गवर्नेंस बन सकती है। आज ऐसी लड़की जिसको बिजनेस किसे कहते हैं पता ही नहीं था, वो नौकरी की तलाश में खुद थी, नौकरी के लिए भटक रही थी, आज वो हज़ारों लोगों को नौकरी दे रही है। तो बच्चों को मैं आज के जो यूथ है, मैं उनको ये कहना चाहूँगी कि आपके हाथ में, आप देश का भविष्य हो और आप चाहो तो बहुत कुछ कर सकते हो। आपके हाथ में तो बहुत कुछ है करने के लिए, ज़रूरत है सिर्फ एक कदम उठाने की, ज़रूरत है हिम्मत की, मेहनत की, ईमानदारी और एक जुनून की। जब ये जुनून तुम्हारे अंदर आ जाएगा ना कि तुम्हें कुछ करना है, तो यकीनन तुम ज़रूर कुछ करके दिखाओगे। जिस तरह से कल्पना सरोज कर सकती है, जिसके पास जो जीरो थी, आज वो जीरो ऐसे बन गया कि किसी भी आंकड़े पे लगा दो तो उसकी प्राइस बढ़ जाएगी। तो आप सब भी बन सकते हो। थैंक यू।